mother also came. Celebrate with joy and happiness.
Oh, dekho kon aaya, saath baba bhi aaya. देखो कौन आया साथ बाबा भी आया शिवा एंड बाबा टुगेदर
यू आर द ओशन ऑफ लव यू आर द ओशन ऑफ लव
शांति. अभी जो सीरीज चल रही है आई लव के, उसका आज लास्ट टॉपिक है कि आई लव ब्रह्मा भोजन. ब्रह्मा भोजन नाम सुनते ही क्या होता है कि मुंह में पानी आ जाता है कि अभी कि ब्रह्मा भोजन. तो ब्रह्मा भोजन क्या है कि जो शिव भोलानाथ के भंडारा में जो भोजन बनता है उसको क्या कहेंगे, ब्रह्मा भोजन. एक मुरली में बाबा ने ब्रह्मा भोजन को दुख भंजन भोजन भी कहा है कि यही भोजन है जो सबके दुख दूर करते हैं. आजकल हम देखें कि कोई भी प्रोग्राम हो, किसी का बर्थडे हो, किसी ने शरीर छोड़ा हो तो भी क्या होता है, ब्रह्मा भोजन कराते हैं कि उसकी आत्मा को शांति मिले. कि इसके लिए क्या करते हैं कहीं कहीं तो, कि अभी एक पेशेंट एडमिट था, सेंटर की बहन थी, उसके सेंटर वालों ने सुनाया कि जो दीदी थी उसको ब्रह्मा भोजन का इतना महत्व वो जानते थे और इतना शौक था कि वो बता के गए थे कि मैं जब शरीर छोड़ू तो ब्रह्मा भोजन में ये आइटम रखना और ऐसे ऐसे ब्रह्मा भोजन कराना. कि आज सब लोग बता के जाते हैं कि क्या करना, कि हम शरीर छोड़े तो हमारे लिए ब्रह्मा भोजन में ये बनाना या क्या क्या आइटम चाहिए ये बता के जाते हैं. और हम तो देखो कि हम तो क्या है, हर रोज ब्रह्मा भोजन खाते हैं कि बाबा के भंडारे में जो भी बनता वो क्या हुआ, ब्रह्मा भोजन. सब विशेष ही है कि जो भी बाबा की याद में बनाते और बाबा के बच्चे जो भी भोजन बनाए वो क्या हुआ, ब्रह्मा भोजन हुआ. तो कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जिसका क्या होता, सेंटर पे आते टोली खा के या ब्रह्मा भोजन खाते ही क्या बन जाते हैं, वो ज्ञान में आ जाते हैं। जैसे हम छोटे थे तो हमने कोर्स तो कर लिया था, पूरा कोर्स नहीं हुआ था, 2-3 दिन ही कोर्स हुआ था स्कूल के वजह से, फिर सिर्फ गुरुवार सेंटर को जाते थे भोग खाने के लिए, कभी कभार तो सवेरे भी जाते थे और शाम को भी जाते थे, दोनों टाइम भोग खा के आते थे। तो यही जो भोजन है, जो इसका इतना महत्व है कि जो बाबा का बना भी देते हैं, और जो भोजन में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ तो वो बाबा से दूर भी कर देते हैं। जैसे हम टोली और भोग खा खा के ही बाबा के बने, ऐसे ही एक पेपर भी आया था जो भोजन की वजह से ही बाबा को छोड़ भी दिया था, जो हॉस्टल में पढ़ाई करने का हुआ, ज्ञान में आने के बाद भोजन की और मुरली सुनने की, वही दो धारणा पक्की हुई थी। मुरली समझ में नहीं आती थी पर रोज जाके सुनते थे, और दूसरी जो धारणा पक्की हुई थी वो भोजन की। अमृत वेला इतना पहले से पक्का नहीं हुआ था, फिर पढ़ाई के लिए हॉस्टल में जाना हुआ तो वहां पर पहले तो बोला कि आपको बिना खाना तो वहीं पर था, कोई ऑप्शन ही नहीं था हॉस्टल में, कि हॉस्टल में जो बनता था वही खाना था। पहले बोला कि आपको बिना प्याज लहसुन का हम खाना देंगे, तो थोड़े दिन तो दिया, फिर नहीं दिया खाना, और मुरली भी इतना नहीं मिलती थी। तो एक मुरली में जो बाबा ने कहा है कि अन्न दोष भी लग जाता है, कि या तो किसी की मजबूरी में आके, या जो संबंधी है उसके हम स्नेह के वश जो हमने कोई भी भोजन ग्रहण कर लिया, तो वो अन्न क्या करता है, अपना संग लगा देता है और बाबा से दूर कर देता है। तो ऐसे ही हम जिसके घर खाना खाने जाते थे, उसकी दुकान थी छोटी सी भोजन की, तो सब फ्रेंड्स बोलते थे कि उसके घर का सब्जी रोटी खा सकते थे तो वो क्यों नहीं खा सकते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे करके फास्ट फूड खाना शुरू किया, फिर सब धारणाएं तो छूट गई। फिर बाबा को बोल दिया कि आप कौन और हम कौन। तो ऐसे ही कि जैसे बाबा के घर का खाना खा खा के बाबा के बने थे, और वही जो दूर हो गया कि एक ही धारणा गई अन्न की धारणा, तो सीधा बाबा से कि दूर होना पड़ा। तो यही ब्रह्मा भोजन का इतना महत्व है, कि जो महिमा है वो ब्रह्मा भोजन की कैसी है, अपरंपार महिमा है। तो बावन का क्यों इतनी महिमा है, क्योंकि यही भोजन को हम स्वीकार कर पवित्र बनते और पवित्र दुनिया के मालिक बनते हैं। कभी कभार जो संदेश या संदेश लेके आते तो उसमें क्या बताते हैं कि सूक्ष्म वतन में बाबा महफिल बताते हैं, कि ब्राह्मणों और देवताओं की महफिल लगती है, तो जो देवता है वो भी इस ब्रह्मा भोजन के लिए तरसते हैं। तो ब्रह्मा भोजन की कितनी वैल्यू है, जो देवता भी खाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि यही ब्रह्मा भोजन है जो हम शिव बाबा की याद में रह के शिव बाबा को भोग लगाकर उनको स्वीकार कराकर फिर ग्रहण करते हैं। ईश्वरीय शक्ति, जो बाबा की जो शक्ति है, परमात्मा की शक्ति, जिससे जो हाई एनर्जी फूड बनता वो ये ब्रह्मा भोजन बनता। सतयुग में जो खाना होगा उसमें क्या होगा, प्रकृति होगी, सिर्फ आत्मिक शक्ति होगी, उसमें परमात्मा की शक्ति नहीं होगी। और देवताओं, बाबा ऐसे बताते कि देवताओं के भी क्या लगता है, यही भोजन है जिसको स्वीकार करके हम देवता बने हैं, पवित्र दुनिया के मालिक बने हैं। तो ये जो ब्रह्मा भोजन है उसका हमको आदर भी होना चाहिए, कि सम्मान होना चाहिए, क्योंकि ये भोजन है एक पूंजी समान है जो अमानत है। तो बाबन का इसके कण कण की वैल्यू है, बहुत वैल्यूएबल है। जो बाबा के बच्चे होते, जो माताएं होती है, वो कैसे करके धन थोड़ा बहुत इकट्ठा करके बाबा के यज्ञ में देके सफल करते हैं। तो उसको हमें सफल करना है, जो भी ब्रह्मा भोजन मिलता है उसको हमें, चाहे कुछ भी हो, ऐसे नहीं सोचना कि ऐसा है वैसा है, और वेस्ट नहीं करना है। क्योंकि आजकल देखो दुनिया में बहुत लोग हैं जिसको खाना भी नहीं मिल रहा है, और हम यहाँ पर वेस्ट कर दे तो वो तो स्थूल रीति से हुआ। और दूसरा कि जो बच्चे सफल करते हैं तो बाबा को उसको कई गुना रिटर्न में देना है, और इसका ही हमने वेस्ट कर दिया। तो ऐसे ही एक जानकी दादी का एक अनुभव है, कि दादी जब पुणे में थे तब वो मम्मा वहां पर गए थे, तो दादी चावल धो रहे थे, तो सिंक में पांच चावल के दाने धोते समय गिर गए है। तो मम्मा ने देखा और बोला कि किसे गिर गए, तो दादी ने बोला कि धोते समय दाने गिर गए। तो उस समय मम्मा ने बताया कि ये दाने ले लो, साफ करके वापस इसमें डाल दो जो हम चावल बनाने वाले हैं, क्योंकि जो बच्चे ने बाबा के यज्ञ में एक एक कण दिया है, बाबा को उसका कई गुना रिटर्न देना है। तो हमें भी ब्रह्मा भोजन की इतनी वैल्यू होनी चाहिए, जो हमें एक दाना भी वेस्ट नहीं करना है। और दूसरा हम देखें कि ब्रह्मा भोजन जो बनता है उसकी क्वालिटी क्या क्या होनी चाहिए, जिसको हम ब्रह्मा भोजन या सात्विक भोजन कह सके। स्थूल रूप से देखा जाए, जैसे हम कोर्स कराते हैं तो उसमें हम क्या बोलते हैं कि राजयोग के चार आधार स्तंभ है कि ब्रह्मचर्य, सत्संग, देवी गुण और भोजन कि शुद्ध अन्न। तो चारों जो स्तंभ है वो जरूरी है। मान लो चारपाई या कुर्सी की एक पैर भी टूट जाए तो हम उसके ऊपर बैठ नहीं सकते, तो भोजन का भी शुद्ध अन्न का भी इतना ही महत्व है। तो मोटे रूप से देखा जाए कि सात्विक भोजन क्या है, तो हम कहेंगे कि वेजिटेरियन होना चाहिए, बिना प्याज लहसुन वाला, कम मिर्च मसाले वाले। तो उसकी स्थूल रूप से परिभाषा हो गई कि इसको हम सात्विक अन्न कहेंगे। लेकिन जो सूक्ष्म रूप से देखा जाए तो जो सात्विक अन्न बाबा के भंडारे में जो भी अन्न बनता है वो किस धन से कमाया गया है, कि धन भी बहुत वैल्यू रखता है। कि जो अशुद्ध धन से कमाया होगा तो वो धन क्या करेगा, खुशी नहीं आने देगा। और खुशी नहीं होगी तो क्या होगा, कि जितना अशुद्ध धन होगा उतनी चिंता बढ़ती जाएगी। और चिंता क्या है, चिता समान है। तो बाबा ने एक ही मुरली में कहा कि चिता पर बैठ के कोई खुश कैसे रह सकता है। तो इसका हम लौकिक में धन कमाने से एग्जाम्पल देखे तो जो साधु संन्यासी होते हैं उसमें भी क्या होता है, क्रोध होता है। तो बाबा कहते वो तो पूरा अपना घर बार सब छोड़ के, सबका त्याग करके संन्यास ले लिया है, फिर भी क्रोध क्यों है। तो वो चाहे तो अन्न खाते हैं, अन्न नहीं खाते हैं तो भी जो पैसे या जो भी चीजें लेते हैं वो किससे लेते हैं, गृहस्थियों से लेते हैं, पतित मनुष्यों से लेते हैं। तो उसकी धन का असर भी, जो धन है उसका असर भी क्या होता है, उसके ऊपर पड़ता है। तो बाबा कहते हैं कि यज्ञ में कई ऐसे है जो बोलते हैं कि इतना धन देने को तैयार है, हम ये इतना सेवा में लगाएंगे। तो बाबा कहते हैं जो भी धन देने वाले हैं पहले तुम उसकी सेवा करो, कि वो जो धन कमाते हैं वो किस रीति से कमाते हैं। या एक मुरली में तो बाबा ने ऐसे भी कहा है कि हमको लगता है कि धन जो कमाया गया है वो अशुद्ध रीति से कमाया गया, तो उसको भोजन में यूज नहीं करना है, स्थूल सेवा में लगा देना है। तो धन की इतनी वैल्यू है, क्योंकि ऐसे कहते हैं कि जो अशुद्ध धन होगा वो कैसे कमाया जाता है, पहले तो उसके मन में अशुद्ध संकल्प आते हैं। कि कईयों को क्या होता है कि हम इतना कमा ले या हमको लॉटरी लग जाए तो हम बाबा की घर की सेवा कर ले, पर जिस रीति से हमने धन कमाया होगा उस हिसाब से हमको फल भी मिलेगा। तो और जो दूसरी बात है वो स्थिति की, कि जो भी व्यक्ति ब्रह्मा भोजन बना रहा है उसकी स्थिति क्या है। कि मान लो कि चलो सही कि हम बाबा के भंडारे में ही भोजन बना रहे हैं, घर की बात तो अलग है, पर जो बनाने वाले हैं उसकी स्थिति ही ऊपर नीचे है। बनाने से पहले किसी से उसका झगड़ा हो गया या किसी ने अपमान कर दिया, फिर वो भोजन बनाने गया तो क्या वो उसकी स्थिति क्या होगी, पूरी स्थिति ही उसके ऊपर नीचे होगी। तो जो खाने वाले हैं उस पे भी क्या होगा, उसकी स्थिति भी ऊपर नीचे हो जाएगी। फिर जो तीसरा है वो क्या, संकल्प, कि हम जब बनाते हैं उस समय हमारा संकल्प या तो भाव कहे भावना कहे वो कैसी है। जैसे स्थूल में देखे तो माता है जब भोजन बनाती है और पता है कि ये सब्जी बच्चे या पति को पसंद नहीं है, तो बनाते समय क्या सोचते हैं, कि बना तो लेंगे पर इसको पसंद नहीं है, नुस्ख निकालेंगे या वो कहेंगे, तो सच में वो खाने वाले होंगे तो भी क्या होगा, आते ही शुरू कर देंगे कि ऐसे बनाया वैसे बनाया। और ये जो गृहस्थी लोग है उसमें झगड़े का एक रीजन भी बन जाते हैं कि तुम मेरी माँ जैसा खाना नहीं बनाती हो, कि मेरे माँ तो ऐसा खाना बना देते। तो हम जब खाना बनाते हैं उस समय हमारा संकल्प क्या चलते हैं, कि या तो हम जो भी सोचे वो ऐसे नहीं सोचे कि अपने बच्चे या पति के लिए बनाते, ऐसे सोचे कि हम भगवान के लिए बना रहे हैं, श्रेष्ठ भावना से बनाए, या सोचे कि ये लोग भी क्या देवता बनने वाले हैं तो हम देवताओं के लिए खाना बना रहे हैं। एक ही प्रसाद है, सबसे श्रेष्ठ संकल्प है कि हम स्वयं भगवान के लिए खाना बना रहे हैं, तो क्या होगा, हमारी बुद्धि भी बाबा से कनेक्ट हो जाएगी और जो बाबा की जो शक्ति है वो शक्ति खाने में भर जाएंगी। तो संकल्प और भाव भी इतना महत्व रखते हैं। ऐसे ही हमने किसी की क्लास में सुना था कि बाप दादा आए हुए थे और बड़ी दादी ने बाप दादा को आम खिलाया, तो बाबा ने कुछ कहा नहीं, पर क्या किया, जिस बहन ने भी आम काटा था उस बहन को बुलाया और आम उसके मुंह में रख दिया, उसको खिला दिया। क्यों? क्योंकि आम बहुत खट्टा था। तो बाबा ने क्या शिक्षा दी, बाबा ने तुरंत ऐसे नहीं बता दिया कि किसने काटा है, ये तो बहुत खट्टा है, तो ऐसे बाबा ने उसको शिक्षा दी। और हमने सुना है कि भोली दादी भी जब भोग बनाते थे तो वो थोड़ा सा अलग करके चख लेते थे, तो बाबा कहते थे चखने से खाना झूठा नहीं हो जाता है। हम किसी को खाना खिलाते और ज्यादा नमक हो ज्यादा मिर्च हो तो कैसा लगेगा, तो ये तो हम स्वयं भगवान को भोग लगाते हैं तो वो भोग कैसे होना चाहिए। कि और जब भी हम बनाते हैं तो और क्या ध्यान रखना है, स्वच्छता की। बाबा ने कहा कि जैसे मन की शुद्धि तो हो गई, शुद्ध संकल्प से श्रेष्ठ भाव से भोजन बनाता है, तो स्थूल रूप से भी स्वच्छता जरूरी है। जो भी बनाने वाले हैं, ऐसे नहीं कि हमारी ड्यूटी है लेट हो गए तो बिना स्नान किए किचन में चले गए और भोजन बनाने लग गए है, तो जो कपड़े पहने हैं वो भी स्वच्छ होने चाहिए, और जिस बर्तन में बना रहे हैं जहां पर सब्जियां काट रहे हैं वो पूरा सब स्वच्छ होना चाहिए। जैसे हम मंदिरों गुरुद्वारों में भी कितनी सफाई और शुद्धता से भोजन बनाते हैं, क्यों सोचते हैं कि ये भगवान को भोग लगेगा और प्रसाद है, तो यहाँ तो हम स्वयं भगवान के लिए भोग बना रहे हैं, तो कितना स्वच्छता से बनाना चाहिए। ऐसे ही एक बार संदेशी बाबा को भोग लगाने वतन में गई, तो भोग की थाली में बाबा ने उसको क्या दिखाया, सांप दिखाया, भोग की थाली में सांप दिखाया, तो संदेशी डरकर नीचे आ गई वापस, और वो बड़ी बहन को बताया कि भोग की थाली में तो सांप है। तो जिसने भी थाली तैयार की थी वो बहन ने बताया कि ऐसे कैसे सांप कैसे हो सकता है, और फिर बारीकी से वो भोग की थाली का चेकिंग किया तो उसमें से बाल निकला। तो बाबा कहते कि जब हम खाना खाते और बाल निकल जाए तो क्या हो जाता है, खाना तो अशुद्ध हुआ, वो दिल नहीं लगती कि ये खाना खाए, घृणा आ जाती है कि ऐसे भी थोड़ी भी स्वच्छता नहीं रख सकते है, खाने में बाल आ गया। तो ऐसे बाबा क्या एक एक एग्जाम्पल देके हम बच्चों को सिखाते हैं, समझाते हैं, तो स्वच्छता का भी इतना ही महत्व है। और जो लास्ट बात है वो मौन, कि जैसे हम श्रीनाथ द्वारे का सुना है कि श्रीनाथ द्वारे में जब भोजन बनता है तो वो लोग क्या करते हैं, मुंह पे पट्टी लगा देते हैं, जगन्नाथपुरी में मुंह पे मास्क लगा देते हैं। अभी तो देखो हम नहीं सीखते तो परिस्थिति हमको सिखाती है कि आजकल तो सब मास्क पहन के ही करना पड़ता है, तो वो लोग मास्क पहन के या मुंह पे पट्टी लगा के जो भी खाना है वो बनाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि एक तो मौन रहना है, मुंह पे पट्टी लगी हुई तो मौन ही रहेंगे, और दूसरा ये भी सोचते हैं कि भोजन बनाते समय हमने कुछ बोला तो मुंह से वो कण भी निकलते हैं जो भोजन में जाते हैं, तो इससे भी भोजन अशुद्ध हो जाता है, तो हमें भी भोजन बनाते समय क्या करना, मौन में रहकर भोजन बनाना है। मौन में रहकर भोजन बनाएंगे तो ऑटोमेटिक हमारे संकल्प भी अच्छी क्वालिटी के होंगे और भावना भी श्रेष्ठ रहेगी। तो इस रीति से ब्रह्मा भोजन बना तो लिया, फिर क्या करना है, भोग लगाना है कि पहले बाबा को भोग लगाकर फिर खाना खाना है। देखे तो हर सेंटर में, मधुवन में, सब जगह पे गुरुवार को तो भोग लगता ही लगता है, लेकिन दोपहर और शाम के खाने को भी भोग लगाई जाता है। तो बाबा को भोग स्वीकार कराना है। भोग लगाने से क्या होगा, बाबा की जो भी शक्ति है वो भोजन में आ जाती है, और फिर क्या करते हैं, वो जो भोग लगाया होता है उसको सब भोजन में मिक्स कर देते हैं, तो सारे भोजन शक्तिशाली बन जाता है। अब भोजन बनाया भी पूरे ध्यान रख के, भोग भी लगाया, पर जो तीसरी महत्व की बात है वो खाने वाले की। तो ऐसे ही हमने राजू भाई की क्लास सुनी थी, उसमें राजू भाई ने बताया था कि एक छोटी सी बहन थी जो बाबा को भोग लगाती थी, तो बोले कि कई बार कईयों का संकल्प चलता है कि सच में ये वतन में जाते भी है कि ऐसे ही आके बोल देते हैं नीचे आके कि ये देखा ये देखा, या सच में बाबा को भोग लगाते हैं या क्या करते हैं। तो वो छोटी सी बहन थी, तो उसको पूछा कि आप क्या करते हैं, तो बोले जैसे यहाँ का दृश्य होता है ऐसा ही दृश्य बाबा वतन में दिखाते हैं। कई बार बाबा अपने हाथों से उस बहन को भोग स्वीकार कराते हैं, या कई बार बोलते हैं कि आप मुझे भोग स्वीकार कराओ, और जैसे जो भी जिसका भोग होता है उसको भी बाबा वहां पर इमर्ज करके भोग बनाते हैं। तो उसी बहन का एक अनुभव था कि वो लोगों को सेंटर के लिए मकान नहीं मिल रहा था, तो बड़ी बहन ने बोला कि भोग में भोग लगाओ और वतन में जाके बाबा को पूछ के आओ कि मकान कहीं कहाँ पर मिलेगा। तो बाबा वो बहन को बार बार बताए कि मकान बाजू में ही है, तुम्हारे आसपास ही मकान है। तो वो नीचे आके वापस ऐसे ही तो बड़ी बहन जी को बताए, तो बोले आसपास तो कहाँ मकान है, हमने तो पूरा सब जगह ढूंढ लिया, कहीं पर मकान नहीं है। तो उसने बोला कि इस बार बाबा को जाके बताओ कि मकान मुझे दिखाओ, कि मकान दिखने में कैसा है वो दिखाओ। तो वो जब वतन में गए तो वही जो भोग लगाया हुआ था उसी स्थिति में आंख बंद करके वो बहन चलने लगी, और चलते चलते उसने जहां पर राख खोली वहां पर सामने जो व्यक्ति था उसने ही बोला कि मुझे मकान देना है, आप मकान ले लो। तो किराए पे देके उसने ऐसे ही फ्री में कि सेवा के लिए पूरा मकान दे दिया। तो हमारे जो भी संकल्प चलते हैं वो हमारी स्थिति के ऊपर है, कि चाहे मानो या ना मानो पर है सत्य है। ऐसे तो कितने कितने लोगों का अनुभव है। यहाँ पर भी हम सुनते हैं कि बाबा जब सबको घूमने ले जाते थे और रास्ता नहीं मिलता था तो क्या करते थे, संदेश को वतन में भेजते थे और बोलते थे कि रास्ता देख के आओ, बाबा को पूछ के आओ कि रास्ता कहाँ पर है। जो कैलाश दीदी है गांधीनगर में, उसका तो अनुभव है कि बाबा ने उसको वतन में पढ़ना लिखना सिखाया है। तो कई लोगों का ऐसे अनुभव है कि जो भोग लगा के जाते हैं बाबा के पास और उसमें बाबा को पूछकर भी आते हैं तो बाबा बताते हैं। उसमें जो भोग लगाने वाले है संदेश उसकी स्थिति के ऊपर और सामने जो सुनने वाले हैं दोनों की स्थिति का महत्व रहता है, कि हमारी स्थिति कैसी है और हमने किस स्थिति में सुना। और ये जो ब्रह्मा भोजन कराने का है उससे यज्ञ सेवा भी हम कर सकते हैं। जैसे लौकिक में भी कैसे कहते हैं कि 8-10 ब्राह्मणों को भोजन कराया तो बहुत पुण्य मिलता है, कि ब्राह्मणों को खिलाने से पुण्य मिलता है। जैसे आज की मुरली में बोला कि क्या करते हैं, पितर को बुलाकर उसको खिलाते हैं, तो समझते हैं कि उन तक पहुंच गया। तो यहाँ तो क्या है, एक बार ब्रह्मा भोजन कराया तो कितने 20-25 हजार ब्राह्मणों को खाना खिलाया, भोजन कराया, तो उसका कितना महत्व है। तो धन भी सफल हुआ हमारा और साथ में ब्राह्मणों की दुआ भी मिलती है और और यज्ञ सेवा भी होती है कि जो कि यज्ञ पिता के आके ऐसे देख के दूसरे भी कराते हैं तो दूसरे का भी धन सफल होता है। आप जब बोलो तब तो ऐसे ब्रह्मा भोजन कराने से सेवा भी होती है और ब्राह्मणों की दुआ भी मिलती है। तो अभी हम देखेंगे कि ब्रह्मा भोजन करने से फायदा क्या होता है। सबसे बड़ा फायदा है जो स्वस्थिति, कि मान लो हमने जो पूरी ब्रह्मा भोजन बना है, बाबा की याद में बना, बाबा के बच्चों ने बनाया, जो बनाने वाले हैं वो कंप्लीट प्योर है, सारी धारणा से बनाया, भोग लगाकर बनाया, और हमने भी मन में रहकर बाबा की याद में स्वीकार किया, तो ये इस भोजन को स्वीकार करने से क्या होगा, हमारी स्थिति बनती है कि ये दुखभंजन भोजन है, कि हमारी स्थिति बहुत अच्छी बनती है, श्रेष्ठ स्थिति बन जाएगी इसी की। और दूसरी ओर देखे कि मान लो कि हमने ऐसे ही खाना खा लिया, इधर उधर बातें करते हैं आसपास वालों से, तो क्या होगा, पेट तो भर जाएगा, पेट को शक्ति मिलेगी लेकिन आत्मा को शक्ति नहीं मिलेगी। तो इसी भोजन से हम तन और मन दोनों को स्वास्थ्य तंदुरुस्त रख सकते हैं, कि एक तो जो आत्मिक शक्ति है उसमें परमात्मा की शक्ति है, जो प्योरिटी के वाइब्रेशन है, उससे क्या होगा, हमारा मन शुद्ध होगा, मन को ताकत मिलेगी और शरीर भी शक्तिशाली बनेगा। और जो इसे जो बाबा भी कहते हैं ना कि ब्राह्मण भी है और देवता के लिए भी क्या गायन है, हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस। तो आजकल देखे तो वेल्थ तो है पर हेल्थ और हैप्पीनेस का क्या है, अभाव है। या तो हम कितना ज्यादा खा लेते, मान लो कि हमारे पास बैलेंस में खाना, ऐसे नहीं कि ब्रह्मा भोजन बना हमारी पसंद का बना तो पेट भर के हमने डबल खा लिया, तो रोज रोज नहीं होता, रोज रोज ब्रह्मा भोजन ही है ना, कि बाबा की याद में बाबा के भंडारे में बनता है, चाहे कुछ भी बने पर है तो ब्रह्मा भोजन ही ना। हाँ, तो जैसे मान लो कोई मिठाई बन गई, गुलाब जामुन बन गया, पनीर बन गया, पेट भर के खाना खा लिया तो क्या होगा, नहीं तो बाबा को याद कर पाएंगे और दूसरा क्या होगा, पेट खराब होगा तो पूरी स्थिति ही खराब हो जाती है। फिर डॉक्टर के भी जाना पड़ेगा, तो आजकल लोग क्या करते, 50% अपने लिए कमाते और साथ साथ डॉक्टरों का भी भला करने के लिए आधी कमाई डॉक्टरों की भी कर देते हैं। तो ऐसे बैलेंस में खाना खाना है, ऐसे नहीं कि अच्छा बना और ऐसे नहीं कि बिल्कुल खाना भी नहीं है, और तो और भी वीक हो जाओगे तो फिर सेवा कैसे होगी। तो ऐसा खाना है जिससे एनर्जी मिले, ऐसे नहीं कि पूरा ही ज्यादा ही, ऐसे कई लोग क्या करते हैं कि हम प्याज लहसुन तो नहीं खाते तो मिर्च ज्यादा डाल दो, मसाले ज्यादा डाल दो, तो ये भी ब्रह्मा भोजन की कैटेगरी में नहीं आएगा, ज्यादा मिर्च मसाले वाला भी, क्योंकि वो राजसिक क्या तामसिक में चला जाता है। वो जो ब्रह्मा भोजन है वो हमारा सात्विक कैटेगरी में आएगा। हमने सुना था कि जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा तब 3 दिन तक तो खाना बना ही नहीं था, और उस जब 21 जनवरी को खाना बना तब 800 लोग थे, तो जो खाना बनाने वाला था उसने सिर्फ 7 या 8 छोटी हरी मिर्च से पूरा खाना बनाया था, क्योंकि लाल मिर्च तो बोलते कि लाल मिर्च तामसिक है तो लाल मिर्च यूज नहीं करते थे। तो ऐसे जो खाना है वो बैलेंस में होना चाहिए हमारा, तभी हमारा जो हम बोलते हैं कि स्वास्थ्य है तभी हमारी हेल्थ अच्छी बनेगी, और हेल्थ अच्छी होगी तभी तो हैप्पीनेस आएगी। मान लो कि कई बार रात में ब्रह्मा भोजन होता है, रात को ब्रह्मा भोजन होता तो साइंस में भी ऐसे कहते हैं कि डिनर और सोने के बीच में कम से कम 2 घंटे का टाइम होना चाहिए। जो भी हमने खाना खाया है उसको हजम तो करना पड़ेगा, पर अच्छा ब्रह्मा भोजन बनाए पहले हमने सोच लिया कि हम तो शाम को खाना ही नहीं खाते हैं, या तो हम 6 बजे के बाद खाना ही नहीं खाते, पर अच्छा बनाए तो क्या होता है, रहा ही नहीं जाता, फिर क्या करते हैं 9 बजे जाके कि 8:30-9 बजे जाके खाना खा लिया और पेट भर के खाना खा के सो गया तो फिर क्या होगा। मान लो नियम अनुसार सवेरे उठ भी गए लेकिन जो योग सुस्ती रहेगी, झुटका झुटका खाएंगे, जो योग लगना चाहिए वो योग क्वालिटी वो वाला योग हमारा नहीं लगेगा। तो क्या खाना है और किस समय पे खाना है वो भी जरूरी है, ध्यान रखना जरूरी है, तभी जो खाने से हमारा स्वास्थ्य है वो ठीक रहेगा। और जो कहते हैं कि जो भोजन है वो प्योरिटी का आधार स्तंभ है, कि जो भी पवित्रता है हमारे जीवन की वो भोजन से उसका गहरा संबंध है। कि मान लो कि हम सिर्फ स्वाद के अनुसार ही खा रहे हैं तो इससे क्या होती है, कर्मेंद्रिया उत्तेजित होगी, लालची भी हो जाते हैं, या कईयों की क्या आदत होती है, उनको पता होता है कि कहाँ पर क्या बन रहा है और वो वहां पर पहुंच जाते हैं। तो ये फिर क्या होगा, हमारा एक संस्कार बन जाएगा। जो बाबा के घर में है तो ब्रह्मा भोजन मिलता ही है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है, पर ऐसा नहीं कि जहां पर भी खाना बना वहां पर हम पहुंच गए हैं। तो फिर जो स्थिति हमारी है, जो सारा अटेंशन कहाँ चला जाएगा, हमारा बाबा की और याद से दूर होके सिर्फ खाने पे चला जाएगा। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक खाने के लिए जीते और एक जीने के लिए खाते हैं, और कोई खाते ही नहीं है। तो ऐसे हमें जो भी हमारा भोजन है उसमें बैलेंस रखना है। और एक बात है कि जो भोजन है वो हमारे ओरा को भी हीलिंग करता है। कि जैसे हम देखो, हम मंदिर में जाते हैं या गुरुवार के दिन जो हमको अमृत मिलते हैं उसका कितना महत्व रखता है, थोड़ा सा ही होता है वो, फिर महत्व क्यों है उसका, क्योंकि बाबा को भोग लगाया है। कि हम सोचते हैं कि बाबा को भोग लगाया है और इसमें हाई एनर्जी है, बोले हाई वाइब्रेशन है, प्योर वाइब्रेशन है। मंदिर में भी देखो जो भी लंगर लगता है और उसमें बड़े बड़े आदमी भी होते हैं, वो भी उसका कितना महत्व रखता है, क्योंकि उसको प्रसाद समझते हैं कि भगवान को भोग लगाकर भगवान की याद में बनाया है। तो ऐसे ही हम जो भी पानी पीते हैं या जो भी खाना खाते हैं उसको भी हम प्रसाद या अमृत बना सकते हैं। तो उसको हम जैसे कि बाबा का आह्वान किया या उसको सकास दे के जो खाना है उसको वाइब्रेशन दे के चार्ज करके हम खाना खाते हैं, तो वो क्या हो गया, हमारी पूरी थाली या जो पूरा पानी का ग्लास है वही प्रसाद या अमृत बन गया। तो जो भी भोजन हम जैसे सोचते हैं कि कोई उल्टा पुल्टा खा लिया तो क्या होगा, नेगेटिव एनर्जी मिलती है, तो ऐसे ही भोजन को चार्ज करके खाएंगे तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और वो हमारे ओरा को भी हील करता है, क्लिंसिंग करता है। तो भोजन से ओरा भी क्लीन होता है। और एक मुरली में बाबा ने कहा कि यही भोजन क्या है, दुख को दूर कर देता है, ऐसे याद का भोजन और इतना प्योर भोजन विश्व में किसी को ही नहीं मिलता, यही भोजन दुख भंजन भोजन है। तो कितनी महत्व है जो दुखी दूर कर देता है। और दूसरा है दवाई और दुआ दोनों को काम करता है। कि हेल्दी खाना खाया और चार्ज करके खाया तो क्या होगा, वो दवा का काम करेगा और जिसने भी खिलाया है तो उसके क्या होगा, दुआ भी मिलती है। तो दवा और दुआई दोनों का साथ में काम करता है। और एक मुरली में बाबा ने कहा कि यही भोजन है, कि जो ब्राह्मणों का भोजन है वो अति सूक्ष्म होना चाहिए। कि जितना तुम खुश रहोगे तो खुशी में क्या होता है, थोड़ा खाना खाते हैं। तो बोला कि जैसे खुशी जैसी खुराक नहीं है, तो जितना खुश हो तो होंगे इतना खानपान कम होता जाएगा। और ब्राह्मणों का खाना अति सूक्ष्म है। साकार मुरली में कहा है कि जो भी नहीं, जो आयुर्वेदिक में जो सात्विक भोजन की परिभाषा है उसमें कहा है कि भोजन बनने के 2-3 घंटे में ही खाना खाना वो सात्विक भोजन है। ताजा खाना खाना, चिप्स तेल में तले तो वो सात्विक में आती ही नहीं है। तो ऐसे ही जो खाना है वो मन को शांति भी देता है और शक्ति भी देता है और साथ में खुशी भी मिलती है। कई बार साकार मुरली में भी बाबा कहते हैं कि खाना बाबा की याद में खाना खाने से क्या मिलेगी, हमको ताकत मिलेगी, बल आएगा, जो माया से लड़ सकेंगे। मन से और शरीर से दोनों से कमजोर है तो फिर क्या होगा, सेवा ही नहीं कर पाएंगे, तो फिर स्थिति कहाँ से बनेगी। और अब आप लोग बताओ ब्रह्मा भोजन के फायदे। हाँ, कि बाबा की याद में, एक तो यहाँ जो मधुवन में है तो सबकी भावना रहती है, चाहे जो भी सीजनल फ्रूट हो या कुछ भी हो, सबसे पहले हम मधुवन में भेजे हैं, बाबा को भेजे हैं, तो ये भी फायदा है। मधुवन के ठाकुर खाते हैं, चैतन्य ठाकुर कि यहाँ चैतन्य ठाकुर खाते हैं। हाँ, कि जो भी प्रसाद खाते हैं वो कितना भाग्यशाली है, कि जो भी प्रसाद होता है, जो कितने लोग ऐसे करते कि नहीं हमको थोड़ा एक एक दाना भी मिल जाए प्रसाद का, तो हम तो हमारा जो खाना है वो हर रोज क्या है, हम तो प्रसाद ही खाते हैं। कि भगवान खिलाने वाला, खिलाने वाला कौन है या हम किसके घर का खा रहा है, खा रहे हैं, भगवान के भंडारे का भोजन कर रहे हैं। कि जैसे मान लो कि अभी हम सुना कि बाबा की याद में खाएंगे तो ताकत मिलेगी, माया से लड़ सकेंगे, लेकिन बाबा की याद में ही हमने खाना नहीं खाया, दूसरों से बातें करते करते या परचिंतन करते हुए खाया तो क्या होगा, हमारा खाना माया खा जाएंगी, पेट में भले हमारा गया लेकिन जो शक्ति है वो माया को मिलेगी और फिर हम माया से हार जाए, हार खा लेंगे, फिर लगेगा कि हम सारा सब कुछ हमारा ठीक है, सब कर रहे, अमृत वेला कर रहे, मुरली सुन रहे, सारे श्रीमद पर चल रहे, पर मान लो कि खाते समय ही हम नहीं, हमारा भोजन करने का तरीका ही सही नहीं है तो क्या होगा, जो हमारी स्थिति होनी चाहिए वो नहीं बनेगी। कि जो भी बाबा की याद में खाना नहीं खाते वो क्या है, चोर है। हाँ, कि जैसे हम वैल्यू नहीं रखते कि एक एक क्या है, ये मोहर के समान है, कि हमने पानी वेस्ट किया या खाना वेस्ट किया तो एक समय हमारे सामने आएगा जो हमको खाना भी नहीं मिलेगा, और पानी वेस्ट किया है तो पानी भी नहीं मिलेगा, तो हमको इतनी वैल्यू रखनी है कि अमानत है। तो जैसे पैसे थोड़ी हम किसी को ऐसे ही फेंक देंगे या किसी को दे देंगे, क्यों वैल्यू रखते हैं पैसे की, तो ऐसे ही हमें ब्रह्मा भोजन, जो भी भोजन है और पानी है उसकी इतनी वैल्यू रखनी है। कि जो भी हमारा भोजन करने का तरीका है वो भी देवताओं की तरह होना चाहिए, कि क्योंकि हमें बनना क्या है, देवता बनना है, तो यहाँ पर ही हम देवता जैसे बनेंगे कि तभी हम देवता जैसे बन पाएंगे। जैसे टोली मिली तो क्या करते हैं, चलते फिरते ही टोली खा लेते हैं, तो देवता ऐसे चलते फिरते नहीं खाते हैं पेट से। हाँ, कि लौकिक में भी क्या कहते हैं कि किसी का दिल जितना है तो उसका रास्ता पेट से जाता है, तो यहाँ पर भी कि सेवा करने का है बहुत अच्छा चांस है, कि कोई ऐसे है जो अज्ञान को मानने को ही तैयार नहीं है, तो इसको हम बाबा के याद में बनाया हुआ भोजन खिलाकर स्नेह में कि उसको हम बाबा के बना सकते हैं। तो पहले इसलिए ही क्या मानते थे कि ब्रह्मा कुमारिया जादू करती है, इसके हाथ का खाना नहीं खाना, और दूसरा क्या कहते, इसकी आंखों में नहीं देखना, नहीं तो जादू कर देंगे और अपना बना लेंगे। तो जैसे कोई भी प्रोग्राम होता है तो उसमें क्या होता है प्रोग्राम के अंत में, या तो जैसे भट्टी होती है सेंटर पे भी, तो 2 दिन या 3 दिन की भट्टी होती है, तो उसमें भी लास्ट दिन ब्रह्मा भोजन रखते हैं, या तो टोली टोली मिलती ही है, तो इससे क्या होता है, हमको स्थूल रूप से तो हमको लगा कि भोजन या टोली मिली, लेकिन उसको खाने से कईयों का मन और बुद्धि परिवर्तन होता है और वो बाबा के बन जाते हैं। तो पहले जब हम जब शुरू में आए तब ऐसे बोलते थे कि बाबा को भोग लगाकर खाना खाना है, जैसे समझ में नहीं आता था कि भोग क्या है और ऐसे कैसे बाबा को खाना खिलाना और वो क्या करना, तो बस हम तो ऐसे ही बाबा को बोलते थे कि नहीं, पहले कभी कभार सेंटर पे भी दीदी बोलते थे कि भोग लगा लो बाबा को, ऐसा तो क्या लगाना, कुछ समझ तो आता नहीं था, तो सुना हुआ था, तो बस ऐसे ही बाबा को बोलते थे कि बाबा ये लेके आए हैं, और कि बाबा का कई बार ऐसे बोलते थे कि जो भोग में होता है वो लगाया, और बाबा को ऐसे ही खिला देते थे, ऐसे ही मज करते थे, कि कभी ऐसे करते थे कि बाबा बच्चे हैं तो बाबा को खिलाते थे, कभी ऐसे सोचते थे कि बाबा हमको हमें खिला रहे हैं। और कई बार तो एक हंसी की बात सुना दी, जब हम जो हॉस्टल पे रहते थे तब अपने आप से खाना बनाना पड़ता था, तो खाना तो बना लेते थे तो भोग की थाली अलग रखी थी और अपने खाने की थाली अलग रखी थी। तो फिर कई बार बाबा को ही थाली में भोग लगा के वही थाली में खा लेते थे, जो बर्तन कम धोने पड़े। पर ऐसे करना नहीं है, पर ऐसे करना नहीं है। हम दो तीन बार ऐसे किया है, फिर ऐसे नहीं करते थे कि बाबा की जो थाली है वो अलग रखनी है और वो पूरी शुद्धता से रखनी है। कि बाबा ने कहा कि उसमें जो भी बर्तन में बाबा के लिए खाना बनता है उस बर्तन में दूसरा ऐसे दूसरा कुछ खाना नहीं बनना चाहिए, तो इतना महत्व है। तो खाने के लिए भी जैसे बाबा ने बोला है कि मान लो कि कोई ऐसी परिस्थिति है, कहीं पर जाना हुआ और नहीं मिल रहे, तो वहां पर बाबा ने सिर्फ उन लोगों के लिए ब्रेड की छूट दी है कि जिनको कुछ भी नहीं मिलता है। तो वो भी बाबा ने बोला कि तुम वो खाने को भी बाबा की याद में इतना चार्ज कर लो कि जो भी पूरा खाना है वो पूरा परिवर्तन हो जाए, जिस भी संकल्प से या जैसे भी बना गया है लेकिन उसको चार्ज करके खाना है। पर वो भी बाबा ने बताया कि परिस्थिति के अनुसार खाना है। आजकल हम देखा जाए तो सब क्या सोचते हैं कि ये तो मशीन मेड है, तो ब्रेड बिस्किट आइसक्रीम तो सब ऐसे ही खाने लगा। पर बाबा ने कोई भी मुरली में ऐसे नहीं कहा है कि मशीन मेड खाना खा सकते। और जो टोली का महत्व है कि जो बाबा के घर की टोली है, लेकिन आजकल क्या है, चॉकलेट टोली है, लेकिन आजकल हम शांतिवन के बाहर कितनी दुकानें लगी हुई है कि हम अपने घर के लिए टोली लेके जाते, चलो वहां से टोली लेके जाए। चलो वो जिसकी दुकान है वो तो बाबा का बच्चा है, पर जो बनाने वाले है वो हमको थोड़ी पता है कि वो जो बनाने वाला है वो कौन है। तो हम ऐसे कहते हैं कि मधुवन से हम टोली लेके सेंटर में खिलाई, लेकिन क्या है ये भी, इसका भी कहीं ना कहीं से हमारा हिसाब किताब बनता है। क्योंकि हम कहते हैं कि हम बाबा के घर से लेके आए हैं, बाबा की यज्ञ की टोली है, लेकिन जिसने बनाई वो कौन है, उसका भी वो पैसे से टोली बेचते हैं, तो उसका संकल्प तो चलता है ना कि हम टोली देंगे तो पैसा मिलेगा। तो इसे जो टोली का जो महत्व है वो भी हमें समझना है, कैसे नहीं कि कहीं से भी खरीद ली या खरीद के फिर हमने दूसरों को टोली खिला दी। ओम शांति।